राजीव जी जिसके हाथ में देश के नेतृत्व की बागडोर हो वो हमेशा बहुत अकेला होता है। भारत के प्रधानमंत्री के सबसे निकट आप हैं, सलाह लेते देते में आपका ध्यान सबसे पहले किस बात पर रहता है?
सबसे पहले तो देश की मजबूती पर रहना होता है, देश की प्रगति पर रहना होता है, क्योंकि जब तक हमारी एकता पूरी नहीं होगी देश में तब तक हम आज़ाद रह नहीं पाएंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राजीव जी किन गुणों की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी?
सबसे ज़्यादा तो लीडरशिप की होगी
जी,
कि कांग्रेस के सब अलग अलग विचार के लोग, क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी कांग्रेस की विचारधाराओं के बीच में काफ़ी स्प्रेड है
जी,
तो ये सब लोगों को साथ चलाने की
जी,
और हमारे संगठन में
जी
दोबारा एक ताकत लाने की
जी,
क्योंकि पिछले सालों में संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया है
जी,
जो ताकत अध्यक्षों की थी, प्रदेश अध्यक्ष की या जिला अध्यक्ष की, वो आज नहीं है, वो वापस लानी है
जी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आज वो ताकत कांग्रेस अध्यक्ष की या जिला अध्यक्ष की या स्टेट कांग्रेस अध्यक्ष की क्यों नहीं रह गई?
एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे चुनाव नहीं हुए थे, तो जितने अध्यक्ष थे वो सब नॉमिनेटेड थे
जी, ये दलीय चुनाव नहीं हुए थे।
हाँ, दलीय चुनाव नहीं हुए थे
जी,
और उससे डिससेटिस्फैक्शन काफ़ी रह जाती है
जी।
अब चुनाव हो रहे हैं, उम्मीद है इसी से संगठन काफ़ी मजबूत हो जाएगा पहले से
जी। ये दलीय चुनाव सिर्फ कांग्रेस में न हुए हों ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि विरोधी दलों में भी दलीय चुनाव किसी दल में नहीं हुए,
किसी में भी नहीं हुए।
इसका कारण क्या हो सकता है? अपने यहाँ दल के नेता क्या दलीय चुनाव कराने से झिझकते हैं?
झिझकते हैं, घबराते हैं।
आज भारत में देखने में ये आ रहा है कि जहाँ केंद्रीय दल की ताकत कुछ कमज़ोर हो रही है वहाँ स्थान स्थान पर स्थानीय दल जोर पकड़ रहे हैं। आखिर इन रीजनल पार्टीज़ के, स्थानीय दलों के ऊपर उठने का कारण क्या है?
जो लोग चुनाव में नहीं जीत पाते हैं वो आंदोलन करने लगते हैं, जो हमारे रास्ते बनाए हुए हैं हमारे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में
जी,
वो उनको बाईपास करने की कोशिश करते हैं।
क्या
जब तक हमारी जनता खुद इसे नहीं रोकेगी, खुद अपनी आवाज नहीं उठाएगी, तब तक ये ताकतें बढ़ती रहेंगी
जी। क्या इसका कारण आप ये नहीं मानते कि हमारे यहाँ जो संघीय संविधान है उसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, उसमें हर चीज़ एक बिंदु पर आकर के रुकती है, शिखर से हर फैसला होता है?
ये बात असलियत में इतनी सच नहीं है, ये लोग समझ जितना सोचते हैं हो रहा है उतना नहीं हो रहा है
जी,
बहुत डिसीजंस नीचे भी लिए जाते हैं
जी। लेकिन अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी हो तो हर नेता दिल्ली की ओर भागता है और दिल्ली से अपना फैसला लेकर वापस जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि राज्य राज्य में लोग अपना मुख्यमंत्री खुद चुने?
इसीलिए तो हम अपने चुनाव करा रहे हैं
जी, और आप ये आशा करते हैं कि अब ये विधा आरंभ होगी
जब होगा
हर राज्य में वहाँ के लेजिस्लेटर्स अपने नेता का चुनाव किया।
खाली हमारे संगठन में नहीं
जी,
लेकिन जिला परिषद के चुनाव के, सिटी काउंसिल्स के चुनाव
जी,
ये 10-12 साल से नहीं हुए थे
जी,
अब हमने सब करवाए हैं, हो रहे हैं एक एक कर
जी। अच्छा, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है जैसे पश्चिमी बंगाल में, त्रिपुरा में, उन राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, क्या हमारे संविधान में जो संघीय व्यवस्था है उसमें आप ये मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सही तालमेल बैठ रहा है?
हाँ, ठीक बैठ रहा है। अब बंगाल का ही देखिए आप, कुछ महीने हुए वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, और आज और तब कांग्रेस के सरकार ने उन्हें काफी बड़ा ओवरड्राफ्ट दिया है। हमारे बहुत स्टेट्स हैं उनको भी इतना नहीं, कांग्रेस सरकार के स्टेट्स हैं उनको भी इतना नहीं दिया गया।
हर प्रजातंत्र के लिए यह आवश्यक होता है कि वहाँ एक सशक्त विपक्ष भी हो। हमारे देश में दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया।
ये तो बहुत डिपेंड करता है कि विरोधी दल के लोग क्या चाहते हैं। आज जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो कोई किसी भी पॉलिसी पे बात नहीं करना चाहते हैं।
जी।
वो खाली पीएम के खिलाफ बात करते हैं
जी,
इंडिविजुअल पे ऊपर अटैक करते हैं
जी,
और इससे कोई विरोधी दल भी कभी नहीं बनेगा। अब आप देखिए इतनी समस्याएं चल रही हैं, पंजाब है
जी,
आसाम है, लेकिन किसी ने भी अपना पोजीशन क्लियर नहीं किया इस पे।
लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री ने अभी पंजाब के मामले में जो अकाली दल का आंदोलन है, विपक्षी नेताओं को बुलाया था, उनसे सलाह की थी। इसी तरह से असम में भी
अपना पोजीशन किसी ने नहीं लिया, बोला नहीं कोई।
अच्छा, वो इस बारे में अपना साफ मत नहीं देते,
मत नहीं देते
कि ऐसे में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए।
पब्लिक में अपनी पॉलिसी आगे नहीं रखते हैं ऐसी चीजों में
जी। स्वयं असम में या पंजाब में आगे क्या होगा, इन समस्याओं का आप क्या हल देखते हैं?
दोनों जगह बात चल रही हैं
जी,
मैं अब कुछ बोल दूं
जी
ठीक नहीं होगा,
लेकिन आपका अनुमान है कि इनका हल निकल सकेगा?
हल निकल जाना चाहिए।
एक बार हिंदुस्तान की बड़ी समस्याओं पर हम लोग दृष्टि डालें। हिंदुस्तान में आज भी 48% से अधिक लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, जिन्हें दोनों वक्त का भरपेट दो जून का खाना नसीब नहीं है। आज़ादी आए 35 साल हो चुके हैं, आखिर इस समस्या का निदान क्या है?
जब से आज़ादी मिली है तब से हमने बहुत उन्नति करी है, हम बहुत आगे बढ़े हैं। ये कहना कि 48% को अभी तक खाना नहीं मिलता है, ये शायद ठीक नहीं है
जी, लेकिन वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं।
हाँ, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, क्योंकि गरीबी की रेखा का पोजीशन बदलता रहता है
जी।
हम आज गांव में भी जाते हैं, और मैं काफ़ी गया हूँ, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो खाने पीने की नहीं है। आज वो बिजली मांगते हैं, वो केरोसिन मांगते हैं, गैस मांगते हैं, खाद की बात करते हैं। अगर 20 साल हुए आप देखते तो बिल्कुल समस्या दूसरी थी
जी, लेकिन अब भी कुछ ऐसे भूमिहीन किसान हैं जिनके पास अपना खेत नहीं है, ऐसे अछूत लोग हैं जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, ऐसे गरीब गुरबा हैं।
हाँ,
उनकी हालत आज भी वैसी ही है, कुछ लोग कहते हैं कि उससे भी बदतर हुई है। ये जो प्रगति हुई है देश की, वो छन करके उन तक नहीं पहुंची है।
इसीलिए 20-point program, ये 20 सूत्री program कांग्रेस ने चलाया है, जिसमें यही लोग जो थोड़े बच गए हैं उन्हें ऊपर उठा सकें। अगर हम देखें, भारत की चक्कर लगाएं, तो उन्नति बहुत हुई है, बल्कि बहुत लोग, मिडिल क्लास हमारी बहुत बढ़ गई है, मिडिल और अपर मिडिल बहुत बढ़ गई है। और दुख यह है कि हमारे लोग देख नहीं पाते हैं कि खुद हमने कितनी उन्नति करी है। अगर आप कोई भी ये पैरामीटर्स देखें, जो प्रोग्रेस के पैरामीटर्स हैं, चाहे इकोनॉमिक हों, चाहे सोशल हों, चाहे कोई भी हों, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जितनी उन्नति हमने करी है बहुत कम देशों ने करी है। खासकर अगर आप ये याद रखें कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम कितने गरीब और पिछड़े हुए थे। जो लोग आज नापते कहते हैं जापान कितना पीछे था, वो आगे निकल गया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दूसरी लड़ाई के पहले जापान एक बहुत एडवांस्ड मुल्क था, वो खाली बीच में गिर गया था, दोबारा उठा पाया है, लेकिन हमें तो शुरू से उठाना है।
हम जापान जैसी तरक्की ना कर पाए राजीव जी, लेकिन ये क्या ज़रूरी नहीं है कि गाँव में कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, ऐसी व्यवस्था हो कि गाँवों तक बिजली पहुँच सके?
हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, बिजली तो बहुत हद तक पहुंच गई है, पीने का पानी लोग चाहते नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी स्कीम्स नहीं लगाए जाएं, गांव वाले
जी,
वो चाहते हैं इसके बदले एक बड़ी फैक्ट्री लग जाए। मेरा बड़ा झगड़ा होता है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी छोटे उद्योग लगें जिसमें ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो, ज़्यादा गांव-गांव तक जा पाएँ, पहुंच ज़्यादा हो। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग सब बड़े उद्योग चाहते हैं, वो कोई छोटी चीज़ को छूनी नहीं चाहते।
आपका निजी मत क्या है, देश का भला किस में होगा, छोटे कुटीर उद्योगों में, मझोले दर्जे के उद्योगों में, या बड़े उद्योगों में जैसा कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी वाले चाहते हैं?
दोनों को साथ करना होगा
जी,
क्योंकि जब तक एक आध बड़े उद्योग नहीं लगते हैं तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनती है। एक दफ़े वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाती है तब छोटे उद्योग कामयाब होने लग जाते हैं। उसके पहले बिजली ठीक से नहीं आती, सड़कें नहीं होती, तो जो कोई भी बनता है वो पहुंचा नहीं पाते हैं, देहात से निकल नहीं पाता है
जी,
रॉ मटेरियल अंदर नहीं आ सकता।
ये बीच की रेखा कहाँ पर हो जहाँ कि बड़े उद्योगों के बाद सरकार ध्यान दे, छोटे उद्योग खोलें, छोटे उद्योग लोगों को रोजगार दें, छोटे उद्योगों से गांवों तक वो उत्पादन पहुंचे?
हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम हैं, जैसे 20 पॉइंट के प्रोग्राम में ही हैं जिससे छोटे उद्योग लोग शुरू कर सकते हैं। हमने देखा है कि जहां भी हमने उन्नति की, विकास की जिम्मेवारी हमारे छोटे लोगों को दी है, उन्होंने काम पूरा किया है।
आपके कहने का क्या अभिप्राय ये है कि जहाँ कहीं सरकार किसी इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेती है, नेशनलाइज करती है, तो वहाँ उसकी कार्य कुशलता कम हो जाती है? जहाँ लोग अपने हाथ से अपना काम खुद चलाते हैं वहाँ क्या ज़्यादा संभावना है कि प्रगति हो?
ये बात ठीक भी है
जी,
लेकिन जो उद्योग सरकार चलाती है बहुत से ऐसे हैं जो घाटे पर ही चलेंगे
जी,
जिन मतलब ही नहीं है, उनका प्रॉफिट बनाना मतलब ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार का सोशल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो पूरा करना पड़ता है
जी,
उसमें भी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है
जी। अपने देश में आज भी 10 में से 8 व्यक्ति गांवों में रहते हैं और हाँ, खेती उनके जीवन का मुख्य साधन है। 35 सालों में अगर खेती पर उतना बल दिया गया होता जितना उद्योग पर दिया गया है, तो क्या आप ये मानते हैं कि शायद देश का कुछ ज़्यादा भला हुआ होता?
लेकिन खेती पर तो ज़्यादा बल दिया गया है उद्योग से
जी,
वो तो खाली अब हम उद्योग पर ज़्यादा बल दे रहे हैं।
आप ये मानते हैं कि खेती पर जितना बल दिया गया वो पर्याप्त था?
और जितनी उन्नति हमारे किसानों ने कराई है
जी,
उतनी किसी और सेक्टर ने नहीं करी।
फिर क्या कारण है कि आज भी ज़रा सी बरसात कम होती है, ज़रा सी बाढ़ आती है, तो देश का खाद्य भंडार डावाडोल होने लगता है?
हमारी आबादी दुगनी हो गई है
जी,
जब हम आज़ाद हुए थे तो क्या 36 करोड़ थी शायद
जी,
और अब हो गई है 70 को छूने लग रही है
जी। हाँ,
हमारा कृषि उत्पादन शायद 50 से थोड़ा कम था
जी,
मिलियन टन
जी,
और आज 132-133 को छू रहा है। तो आबादी दुगनी हुई लेकिन उत्पादन करीब 2.5 गुने से ज़्यादा हो गया है
जी,
और ये एक ही वजह से हो पाया है क्योंकि उद्योग और कृषि साथ में बढ़ी हैं। जैसे आपने कहा 80% लोग तो देहात में रहते हैं, तो अगर उद्योग बनेगा भी तो उसका उत्पादन कहाँ जाएगा
जी,
खरीदने वाला तो देहात में ही है और वो किसान है
जी।
तो ज़्यादातर उद्योग ऐसे ही आए हैं जो किसी ना किसी तरह किसान पे पहुँच जाते हैं।
अभी आपने बढ़ती हुई जनसंख्या की बात की कि देश की आबादी 35 साल में दुगनी हो चुकी है। इमरजेंसी के ज़माने में इस तरह के नियम बनाए गए थे ताकि बढ़ती हुई आबादी को किसी तरह रोका जा सके, लेकिन उसके परिणाम में उसका बड़ा प्रतिरोध हुआ। आखिर इस समस्या का हल आप क्या देखते हैं?
असल में समस्या तो दूसरे तरफ से है, क्योंकि हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो जैसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, गाँव-गाँव में पहुँचती हैं, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। आज़ादी पर 32 साल थी, आज करीब करीब 55 साल हो गई है। तो आबादी इसलिए बढ़ रही है, लेकिन काबू करना तो एक ही तरीका है
जी।
उस पे इमरजेंसी में बहुत जोर दिया गया था और बहुत चीज़ें कही गईं जो असलियत में नहीं हुई थी
जी।
ऐसा एक वातावरण पैदा कर दिया गया कि पूरी जनता ये परिवार नियोजन के खिलाफ हो गई और इससे हमें बहुत हानि हुई है
जी।
अब उस तरह से जोर से बात करना शायद ठीक नहीं है, लेकिन तब भी हमने काफ़ी ज़ोर से प्रोग्राम चला रखा है।
राजीव जी, आज भी सन 1982 में अपने देश में कुछ ऐसे सामाजिक दोष हैं जिनका उन्मूलन मुश्किल हो रहा है। आज भी छुआछूत वहाँ मौजूद है, आज भी दहेज के नाम पर वहाँ बहुएं जला दी जाती हैं, आज भी वहाँ जातिवाद का, भाई भतीजेवाद का जोर है, आज भी वहाँ सांप्रदायिकता की लहर जगह जगह आती है, दंगे होते हैं, इनका हल आप क्या देखते हैं?
इन सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कानून तो बनाए, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऐसी चीज़ें कानून से नहीं हटती हैं। ये तो जब तक दिल से नहीं निकलेंगी, जब तक हमारी पूरी जनता चाहेगी नहीं, तब तक ये सब चीज़ें नहीं हट सकती। हमें एक वातावरण बनाना है जिसमें पूरी जनता इन चीज़ों को देश से हटा दे। जब तक हमारी जनता इसकी जिम्मेवारी खुद नहीं उठाएगी, तब तक ये नहीं जाएंगी। और यही चीज़ें हैं जो हमारे पूरे इतिहास में हमें कमज़ोर रखी हैं। जब भी ये ऊपर उठी हैं, तभी कोई बाहर से आकर हमारे ऊपर हमला कर गया है, राज कर गया है, और जब ये नीचे रही हैं तब हम बहुत मजबूत रहे हैं। आज थोड़ा दुख होता है कि जो दलें अपने ताकत चुनाव पे नहीं दिखा पाती हैं, वो इन चीज़ों को उठाने शुरू करती हैं और इन पे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करती हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि इससे खाली चाहे उनका थोड़ा शॉर्ट टर्म लाभ होए
जी,
लेकिन देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
राजीव जी, आप देश के भविष्य की क्या कल्पना करते हैं? क्या आने वाले दिन देश के लिए शांति और समृद्धि लाएंगे? क्या हम देश को उबार करके उस जगह ले जा सकेंगे जहाँ फिर हम एक बार कह सकें कि हमारा देश सोने की चिड़िया है?
बिल्कुल, आज हमारा देश एक ऐसे जगह है जहाँ से हम बहुत तेज़ी से ऊपर उठ सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट पर है। एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हम हमारे सब लोगों की थोड़ी इनिशिएटिव बढ़ाएं, हम ऐसा वातावरण पैदा करें कि लोग उठकर अपने आप काम करें, बजाय सरकारी नौकरी के लिए ठहरने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड होएं। क्योंकि जब तक सब लोग कुछ बोझा नहीं उठाएंगे, तब तक देश कैसे आगे बढ़ सकता है?
भगवान करे आपकी कल्पना सफल हो। ये इंटरव्यू देने के लिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार।